पृष्ठ संख्या 13, शीर्षक है परमाणुवादी ल्यूसिपस और डेमोक्रिट्स। एम्पेडोक्लीज और एनेक्सिगोरस ने परमाणुवादी ल्यूसिपस और उनके प्रसिद्ध शिष्य डेमोक्रिट्स के लिए क्षेत्र तैयार कर दिया था। ये परमाणुवादी एम्पेडोक्लीज और एनेक्सिगोरस से इस विषय में सहमत थे कि परम तत्व नित्य अविकारी तथा उत्पत्ति विनाश रहित है और उत्पत्ति का अर्थ संयोग तथा विनाश का अर्थ वियोग मात्र है। वे एनेक्सिगोरस से इस विषय में सहमत थे कि एम्पेडोक्लीज के चारों महाभूत मौलिक न होकर मौलिक द्रव्यों के संयोग मात्र हैं। एम्पेडोक्लीज के बीजों को परमाणुवादियों ने अपने अविभाज्य परमाणु में परिणत कर दिया। एम्पेडोक्लीज ने गति के लिए प्रेम और विरोध की कल्पना की और एनेक्सिगोरस ने परम विज्ञान की शरण ली, किंतु परमाणुवादियों ने गति को परमाणुओं का ही धर्म मान लिया। पृष्ठ संख्या 14, ल्यूसिपस और डेमोक्रिट्स के परमाणु मौलिक अविभाज्य अतींद्रिय नित्य उत्पत्ति विनाश रहित जड़ तत्व हैं। गति उनका धर्म है। उनमें केवल संख्या परिमाण और आकार का भेद है, अन्य गुणों का भेद उनमें नहीं है। वे आकाश में स्थित हैं और एक दूसरे से अलग हैं। सृष्टि की उत्पत्ति का अर्थ है उनका परस्पर संयोग और विनाश का अर्थ है उनका परस्पर वियोग। आत्मा या विज्ञान कोई अलग तत्व नहीं, वह भी इन परमाणुओं के विशिष्ट संयोग से उत्पन्न होता है। न्याय वैशेषिक के अनुसार परमाणुओं में गुणगत भेद भी है, किंतु जैन और ग्रीक परमाणुवादियों के अनुसार गुणगत भेद नहीं है। न्याय वैशेषिक और जैनों के अनुसार आत्मा स्वतंत्र तत्व है और परमाणु संयोग से उत्पन्न नहीं होता। न्याय वैशेषिक के अनुसार गत के कारण ईश्वर है, जो अदृष्ट की सहायता से परमाणुओं में गति संचार करते हैं। जैनों के अनुसार गति कर्म से उत्पन्न होती है। ग्रीक परमाणुवादियों के अनुसार गति परमाणुओं का अपना ही धर्म है। अगला शीर्षक है सोफिस्ट संप्रदाय। ईसा पूर्व 5वीं सती के मध्य में ग्रीस में संदेहवाद की धारा वेग से बही। धार्मिक अंधविश्वास उखड़ रहे थे और सामाजिक तथा नैतिक जीवन की रूढ़ियों पर भी आंच आ रही थी। जिन लोगों ने इस विचार स्वातंत्र को लाने में सहायता दी, वे सोफिस्ट कहलाते हैं। ये लोग अपने समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों की उपज हैं। प्रारंभ में सोफिस्ट शब्द का कोई बुरा अर्थ नहीं था। ग्रीक प्रजातंत्र में जो युवक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में उच्च पदों के अभिलाषी थे और न्यायालयों में वकील बनने के इच्छुक थे, उनका अन्य बातों के ज्ञान के साथ साथ तर्कपटु और कुशल वक्ता होना आवश्यक था। उस समय आधुनिक ढंग के विद्यालय तो थे नहीं, अतः सोफिस्ट लोग नगर नगर घूमकर संपन्न परिवारों के नवयुवकों को शुल्क लेकर वक्तृत्व, कला, साहित्य, दर्शन, राजनीति, तर्कशास्त्र आदि की शिक्षा देते थे। प्रारंभ के सोफिस्ट तो दर्शन और ज्ञान में सच्चा प्रेम रखते थे, किंतु बाद के सोफिस्ट केवल वृत्ति प्रेमी और धन के लोभी ही थे। पर्याप्त धन मिलने पर वे किसी बाजारू कुत्ते को अपना पिता सिद्ध कर सकते थे। अतः बाद में वे हीन दृष्टि से देखे जाने लगे और सोफिस्ट शब्द की रूढ़ व्यर्थ का तर्क करने वाले के अर्थ में हो गई। अगला शीर्षक है प्रोटेगोरस, पांचवी सती ईसा पूर्व। प्लेटो ने अपनी एक कृति इन्हीं के नाम पर लिखी है, जिससे सिद्ध होता है कि प्लेटो इनका आदर करते थे। पृष्ठ संख्या 15। प्रोटेगोरस का सिद्धांत मानव सब पदार्थों का मानदंड है, अर्थात होमो मेंस्योर प्रसिद्ध है। हम देख चुके हैं कि हेरेक्लाइट्स ने अपने सार्वभौम विज्ञान अर्थात लोगोस द्वारा पार्मेनाइडीज ने अपने शुद्ध सत्ता रूप विज्ञान अर्थात प्योर बीइंग द्वारा और एनेक्सिगोरस ने अपने परम विज्ञान नोस द्वारा दर्शन का केंद्र बाह्य जगत से हटाकर अंतरात्मा में स्थापित करने का प्रयत्न किया था। उन तीनों में इस दृष्टि से कोई भी पूर्ण सफल नहीं हुआ। प्रोटेगोरस ने भी अपने इस सिद्धांत द्वारा इस दिशा में एक पद और बढ़ाया, किंतु वे भी इसमें पूर्ण सफल नहीं हुए। उनका मानव इंद्रिय अनुभूत का ही मानव रह गया और उनका सापेक्षवाद व्यक्तिवाद के ऊपर नहीं उठ सका। पीलिया के रोगी को सफेद वस्तु भी पीली दिखाई देती है। प्रोटेगोरस के अनुसार रोगी का ज्ञान उसके लिए यथार्थ है, किंतु स्वास्थ्य की दशा रोगी की दशा से अधिक उपयोगी होने के कारण स्वस्थ व्यक्तियों का ज्ञान रोगी के ज्ञान से अधिक प्रामाणिक है। यह प्रामाणिकता उपयोग पर निर्भर है। अतः प्रोटेगोरस को उपयोगितावाद अर्थात प्रैग्मेटिज्म का जन्मदाता कहा जा सकता है। प्रसिद्ध उपयोगितावादी सीलर भी अपने आप को प्रोटेगोरस का शिष्य कहते थे। अगला शीर्षक है जॉर्जियस, दूसरे प्रसिद्ध सोफिस्ट जॉर्जियस हैं। प्रोटेगोरस को परंपरा और सांस्कृतिक संस्थाओं के प्रति आदर था, क्योंकि उनका मानव समाज के लिए उपयोग है, किंतु जॉर्जियस उग्र विचारों के हैं। उनको भयंकर बालक अर्थात इन्फेंट टेरिबल की उपाधि मिली है। उनके अनुसार सत्य सापेक्ष ही है, निरपेक्ष सत्य असंभव है। उनका मत है कि प्रथम तो कोई सत्य ही नहीं, द्वितीय यदि हो भी तो उसे हम नहीं जान सकते, तृतीय यदि जान भी ले तो उसे दूसरे को नहीं समझा सकते हैं।